है। वे क्या जानते हैं कि किसको वे मनुष्य का जीवन दे रहे हैं, कौन आत्मा है, कहाँ पर है वो है, और कैसे उसको मनुष्य का जीवन प्राप्त हो रहा है, कौन जानता है। तो सेवा भगवान के भगवान की अहेतु की कृपा से आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए आपका कुछ कर्तव्य होता है उन भगवान को प्रसन्न करना, है ना। इसके बाद नंबर आता है परिवार का, समाज का और बाकी जिम्मेदारियों का, है ना। तो अर्जुन को चिंता तो है जाति धर्म और कुल धर्म की, है ना, लेकिन उनको सबसे पहले चिंता होनी चाहिए क्या, अपने व्यक्तिगत धर्म की है? व्यक्तिगत धर्म की अधिक चिंता करनी चाहिए। कलयुग में जो व्यक्तिगत धर्म बतलाया गया है वो क्या है, हरिनाम कीर्तन है? हरिनाम कीर्तन कलयुग में व्यक्तिगत धर्म भी है, पारिवारिक धर्म भी है तथा सामाजिक धर्म भी है। जाति धर्म, कुल धर्म ये सब जो है ना क्या है, हरिनाम कीर्तन। अतः सर्वप्रथम हमें हरिनाम कीर्तन को अपने व्यक्तिगत जीवन में उसी प्रकार शामिल करना होगा जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता होती है। ये भगवान के नाम का कीर्तन जो है, ऐसा नहीं है कि जब अच्छा लगे तो करो, जब मन में आए रुचि हो तो करो, ये नहीं है। जैसे कि भोजन अच्छा लगे या अच्छा ना लगे आप खाते हैं, क्यों, आवश्यकता है ना। बहुत खराब भोजन है, बहुत कड़वा भोजन है, कुछ भी है, लेकिन तो भी खाएंगे। उसी प्रकार से ये हरिनाम कीर्तन को अपने जीवन में उसी प्रकार से जोड़ना जरूरी है। इसके पश्चात इस धर्म को हमें अपने पारिवारिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। पहले अपने जीवन में इस नियम को बनाओ, इसके बाद फिर अपने परिवार में भी इस नियम को जोड़ो, और फिर परिवार से फिर समाज, परिवार के बाहर समाज में भी, तथा इससे भी आगे हमें इस हरिनाम कीर्तन रूपी धर्म को सामाजिक जीवन में भी शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। परिवार तथा समाज के जो नायक हैं उनका यह बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वे हरिनाम कीर्तन रूपी पारिवारिक तथा सामाजिक धर्म की परिवार तथा समाज में स्थापना करें तथा सुरक्षा करें, अन्यथा वही हाल होगा जिस प्रकार अंधा व्यक्ति अंधों का नेतृत्व करता हुआ स्वयं भी गड्ढे में गिरता है तथा अन्यों को भी गड्ढे में गिराता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है, फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं, ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। निष्कर्ष यही है कि जिस प्रकार अर्जुन इस श्लोक में धर्म के प्रति चिंता प्रकट कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी धर्म के प्रति चिंता प्रकट करना चाहिए तथा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि वे हमारे धर्म की रक्षा करें। हरे कृष्णा। तो यहाँ लेख समाप्त हुआ। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका कहना है जब ये माला पर जाप करते हैं तो इनके घर के लोग साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं, तो एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये जो भी हो हमें ये नाम छोड़ना नहीं है और विश्वास करना चाहिए कि यही हमारी रक्षा करेगा, जैसे भी हो, लेकिन साथ साथ अपने घर का परिवार का विरोध नहीं करना चाहिए। जहाँ ऐसी स्थिति हो समाज में या परिवार में कि विरोध करते हैं अगर है, तो आपको जो है उनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अपराध ये भी है नाम का, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, है ना। तो किसी व्यक्ति के अंदर अगर श्रद्धा नहीं है तो आप उसके पीछे मत पड़ो, आप समझे ना, जो कुछ आपको करना है आप चुपचाप करो और उनके साथ कुछ संबंध जो है ना अपने खराब मत करो, है ना। सबसे अच्छा यही है कि उनके ऊपर किसी तरह का जो है ना अपने सिद्धांत थोपना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नाम का अपराध होता है ना। तो ये बहुत आवश्यक है, और कई बार जो है ना इन बातों को छिपाने की भी आवश्यकता पड़ती है तो छिपाया जाए, है कि नहीं। तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। नाम के जो है 10 अपराध हैं, है ना, तो 10 अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो फिर हम खुद ही जो ना इस अपराध से फंस जाते हैं, है ना। तो किसी प्रकार से जो है विरोध नहीं करना चाहिए। एक और भी श्लोक है, दुर्जनेन समं वैरं प्रीतिं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चांगारः सीतः कृष्णायते करम। अगर दुष्ट है कोई व्यक्ति तो उसके साथ में दुर्जनेन समं वैरं, न तो दुश्मनी करो और न ही प्रीति करो। क्यों? उष्णो दहति चांगारः, जैसे अंगार होता ना, अंगार है ना, तो अगर उसको गर्म किया जाता है, गर्मी गर्मी उसको क्या है, जला डालती है, अंगार आग में जल जाता है। और सीधा अगर ठंडा किया जाता है तो काला पड़ जाता है, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो है ना जो गलत लोग होते हैं तो उनके साथ में अगर दुश्मनी की जाती है तो अंगार की तरह जलते रहोगे, है ना। और अगर दोस्ती की जाती है तो फिर कलंकित होते हैं। खैर, अपने घर में ही अगर माँ बाप हैं अगर ऐसे, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन कई मामलों में सहन करना पड़ता है। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जो है कुछ इसके लिए हल बताया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमद् भागवत से दो कथाएं सुना करते थे विशेष रूप से, एक प्रहलाद महाराज की कथा, दूसरी ध्रुव महाराज की कथा। प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज दोनों बालक हैं, है ना, तो घर में अपने परिवार के ऊपर तो उनका कोई बस नहीं चलता है। तो ध्रुव महाराज एक ऐसे बालक हैं जिनके परिवार के लोग हैं, भक्त तो हैं, लेकिन कुछ अगर अन्याय की बात हो तो कोई विरोध करने वाला नहीं। ध्रुव महाराज का जो ना ये हाल है कि उनके पिता भक्त थे, भगवान के कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सौतेली माता ने कुछ कहा, गलत कहा, तो उनके पिता ने कोई विरोध नहीं किया। और प्रहलाद महाराज की स्थिति जो है ना ऐसी है कि उनके घर के लोग तो बिल्कुल पूरे असुर हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति जो ना प्रहलाद महाराज की स्थिति में हो सकता है और कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज की स्थिति में हो सकता है ना। तो जो प्रहलाद महाराज की स्थिति में है उनको प्रहलाद महाराज की कथा हमेशा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, है ना। और भी कई प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवत में, बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, तो अपनी स्थिति के अनुसार उन प्रार्थनाओं का भी अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बात यही है कि खुला विरोध कभी नहीं करना, खुला विरोध नहीं करना कभी भी, कि मतलब जिससे कि किसी प्रकार का तनाव पैदा हो, झगड़ा पैदा हो, ये जरूरत नहीं करने की। हाँ, कोई राजा होता है तो वो कर सकता है, राजा के पास शक्ति होती है, हाँ, तो अपना बल प्रयोग कर सकता है वो। और कोई व्यक्ति अगर उसके आदेश को ना पालन करे तो अपने राज्य से बाहर निकाल सकता है, तो राजा की बात दूसरी है। लेकिन अपने घर में जो है ना अपना कोई अधिकार नहीं है, हाँ, किसी को कुछ कहने का, और कई मामलों में हम उनके आश्रित हैं, हाँ, तो इसलिए विचार करना चाहिए अपनी स्थिति में। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, तो हमने लेख में कुछ बातें बताई हैं, मनुष्य में और पशु में क्या समानताएं, मनुष्य और पशु में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अंतर भी हैं, है कि नहीं। तो किस मामले में मनुष्य में और पशु में समानता है, कौन बताएगा? मनुष्य में और पशु में चार मामलों में समानता है, क्या क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, भोजन उनको भी चाहिए और हमको भी चाहिए, नींद उनको भी चाहिए हमको भी चाहिए, सुरक्षा उनको चाहिए हमको चाहिए, है ना, भोग सामान सामान है मनुष्य में और पशुओं में। लेकिन फिर अंतर क्या है जो मनुष्यों में है और पशुओं में नहीं है, क्या है वो? धर्म ही एको नराणाम विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। तो मनुष्य में धर्म की विशेषता है, तो पांचवी आवश्यकता धर्म की मनुष्य के जीवन में, जितना भोजन जितना निद्रा है ना उतना ही आवश्यक धर्म। बिना सोए आप रह नहीं सकते, बिना खाए आप रह नहीं सकते, तो धर्म जो ना उतना ही आवश्यक है। धर्मेण ही ना पशु भी समाना, धर्म के बिना व्यक्ति जो है ना पशु के समान है, है ना। अब वो धर्म जो है कलयुग में कौन सा है? कली काले युग धर्म हरि नाम संकीर्तन। कलयुग में जो युग धर्म है वो हरि नाम संकीर्तन है। तो जो व्यक्ति इस हरि नाम संकीर्तन को ना अपनाए तो वो फिर क्या है? पशु है, है कि नहीं? इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त हैं उनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक नियम क्या है? हाँ, 16 माला जप करना सबसे ज्यादा आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो घर में रहे, चाहे जंगल में रहे, और चाहे वो दुख में रहे, चाहे वो सुख में रहे, जैसी भी स्थिति हो, लेकिन उसको 16 माला कम से कम जाप करना जरूरी है, है ना। प्रभुपाद जी ने बहुत इस पर जोर दिया, इस बात पर। प्रभुपाद के किसी शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद मेरे पास 16 माला जप करने का समय नहीं है, क्योंकि मैं दिन भर में 20 घंटा काम करता हूँ, केवल 4 घंटा विश्राम करता हूँ, इतना मेरे सेवा है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि अच्छा 4 घंटा विश्राम करते हो, तो तुम 2 घंटा विश्राम करो और 2 घंटे में 16 माला पूरी करो। प्रभुपाद ने कहा इतना जरूरी है 16 माला जाप करना, इतना जरूरी है कि अगर आप 20 घंटे काम करते हो, 4 घंटे विश्राम करते हो, तो 4 घंटे में से भी 2 घंटा निकालो किसके लिए? 16 माला जाप करने के लिए, और 2 घंटे विश्राम करो, है ना, कितना जरूरी है। तो ये आपकी चिंता है, 16 माला अगर नहीं हुआ तो आपको चिंता होनी चाहिए कि नहीं हुआ, 16 माला नहीं हुआ, है ना। जैसे कि सवेरे भोजन का नियम है आपका, भोजन लेते हैं ग्रहण करते हैं, तो सवेरे अगर भोजन आपने ग्रहण नहीं किया तो आपको चिंता हो जाती है कि मैंने भोजन नहीं खाया, मैंने भोजन नहीं खाया, है कि नहीं? उसी प्रकार से ये विचार भी बहुत गलत है कि 16 माला को दिन भर में हम करेंगे, है? और जानबूझ करके 16 माला को जो है बीच में छोड़ते हैं और अनावश्यक बातों में लगते हैं, अनावश्यक कामों में लग जाते हैं कि नहीं ये 16 माला हमको दिन भर में पूरा करना है, इसलिए हम पहले नहीं करेंगे। इस तरह की जो भावना है ये बहुत गलत है। 16 माला जितनी जल्दी हो सके पूरी करना चाहिए, पहले से पहले, है कि नहीं? उसके ऊपर और जितनी हो जाए और अच्छा है, लेकिन 16 माला में एक ढीलापन नहीं होना चाहिए कि ये तो हमें रात तक में पूरा करना है इसलिए हम जो है पूरा नहीं करेंगे, ये भावना गलत है। सवेरे जो भोजन होता है 9 बजे होता है, तो उसके पहले अगर हो जाए 16 माला तो और अच्छा है, कोशिश करें कि भोजन के पहले ही 16 माला पूरी हो जाए, है ना। तो ये बहुत आवश्यक नियम है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरिदास ठाकुर ने जो है क्या नियम बनाया था, कितना जाप करते थे रोज? 300,000 नाम जाप करते थे, 300,000 नाम जाप करते थे, है ना। 300,000 नाम का मतलब कितने माला हुआ है? 192, 192 माला जाप करते थे, है ना। तो फिर बहुत वृद्ध हो गए जब, तो उनका जाप नहीं हो पाता था पूरा, तो वो प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते थे। चैतन्य महाप्रभु का सेवक गोविंद उनके लिए प्रसाद लाया, तो उन्होंने फिर कहा कि चूंकि मेरा नियम पूरा नहीं हो रहा है जाप करने का, तो मैं प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकता हूं, लेकिन चूंकि आप लाए हैं प्रसाद तो मैं अपमान नहीं कर सकता प्रसाद का, तिरस्कार नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया और थोड़ा प्रसाद ले लिया, कुछ कण प्रसाद के ले लिए, अपने मुंह में डाल लिए। तो इतना जो है ना उनकी चिंता। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कहते हैं कि अब तुमको जो ना उन इन नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, अब तुमको इन नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। तो भी हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं इन नियमों को नहीं छोड़ सकता हूं, मैं अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन नियमों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, है ना। इस प्रकार से जो है निष्ठा होनी चाहिए धर्म के प्रति, धर्म इतना ही जरूरी है। जो दूसरे धर्म है तो उनमें भी भगवान के नाम का कीर्तन बताया गया है, चाहे नाम दूसरे प्रकार के हों भगवान के, नाम के कीर्तन की बात जरूर कहेंगे। प्रत्येक धर्म में नाम का कीर्तन बताया गया है भगवान के नाम का, और 10 प्रकार के अपराधों से बचना भी सिखाया गया है। जितने धर्म हैं उनमें 10 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। वो हो सकता है कि वो एक जगह ना मिले 10 अपराध, लेकिन जगह जगह अगर आप खोजोगे ढूंढोगे तो 10 अपराध जरूर मिलेंगे प्रत्येक धर्म में, है ना। और उसमें प्रत्येक धर्म में ये बात बताई गई, अश्रद्धालु को उपदेश नहीं करना, जैसे कि बाइबल में भी लिखा हुआ है, कि जो सुअर होता है ना सुअर, उसके सामने मोती डालने की जरूरत क्या है, मोती तो हंस खाता है ना, सुअर के सामने मोती रखने से क्या फायदा है, वो तो मल मूत्र खाएगा ना, है कि नहीं। तो हरि नाम का की महिमा का उपदेश करने की क्या जरूरत है ऐसे व्यक्ति को जो अश्रद्धालु है, ठीक है ना। तो इससे अपराध होता है, जैसे कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से पूछा कि ये जो विष्णु की भक्ति का ज्ञान है ये किसने दिया तुमको, तो चूंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी, असुर था, ईर्ष्या करता था, तो प्रहलाद महाराज ने नहीं बताया कि उनको ये ज्ञान नारद जी ने सिखलाया, क्यों, क्योंकि वो और अपराध करता है, कि नारद जी ने सिखलाया तो वो और अपराध करता, नारद जी का अपराध करता और गाली भी नारद जी को देता, तो इसलिए उन्होंने नारद जी का नाम नहीं बतलाया, बल्कि बात को बदल दिया प्रहलाद जी ने। उनके जो प्रहलाद जी के जो असुर गुरु थे सन और अमर, उन्होंने पूछा कि किसने तुम्हारी बुद्धि को खराब किया है, तो प्रहलाद महाराज ने उनको भी नारद जी का नाम नहीं बताया, क्योंकि वे भी अपराध करते हैं, लेकिन उनके सहपाठी थे, उनके अंदर श्रद्धा थी। जब उन्होंने पूछा प्रहलाद जी से कि प्रहलाद हम तुम्हारे ही सह उम्र के हैं, तो इसी पाठशाला में तुम भी पढ़े हम भी पढ़े, हम साथ साथ खेले कूदे हैं, फिर ये क्या रहस्य है कि तुमको इतना ज्ञान हो गया, तुमको इतना ज्ञान हो गया और हमें ये इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो प्रहलाद जी ने उनको अपना रहस्य बताया, उनके अंदर श्रद्धा थी, आदर की भावना थी, तो उनको प्रहलाद जी ने रहस्य बताया कि मैं जब अपने माँ के गर्भ में था और मेरे पिता जो है तपस्या करने के लिए गए थे, तो देवताओं ने ये समझ करके मेरे पिता नष्ट हो गए, तपस्या करते करते नष्ट हो गए, तो हमारे नगर में आक्रमण कर दिया और हमारी माता को गिरफ्तार कर लिया। और फिर नारद जी इंद्र को जो है समझा करके मेरी माता को ले गए अपने आश्रम में और वो शिक्षा देते रहे। तो गर्भ के अंदर जो है ना मैं नारद जी के उपदेश को सुनता रहा और मुझे इतना ज्ञान हो गया। और मेरी माँ जो है इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकी, भूल गई। तो प्रहलाद जी ने उनको बताया। तो ये धर्म तो धर्म के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना है, और कुछ जो है ना क्या होते हैं निषेध। तो निषेध कभी जो है ना स्वीकार करना चाहिए। धर्म के जो है ना कुछ ऐसे भी निषेध हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? अब भगवद गीता के महात्म्य हमने चर्चा की है, पता है क्या चर्चा की भगवद गीता के महात्म्य? भगवद गीता को जो है एक वेश्या सुनती थी पहले अध्याय को, किसके मुख से? है तोते के मुख से सुनती थी। और वो नहीं समझती थी कि क्या ये पाठ करता है तोता, लेकिन वो इतना समझती थी कि ये कुछ पवित्र जो ना कुछ पाठ करता है और इसको सुनने से मेरा कल्याण होगा। तो वैसे जो ना इस भावना से तोते के मुख से रोज गीता का पहला अध्याय सुना करती थी। और वो कुछ नहीं जानती थी कि क्या तोता ये पढ़ रहा है, लेकिन उसके श्रवण का कितना बड़ा फल हुआ, कितनी वो पुण्यात्मा हो गई, पता है कितनी पुण्यात्मा हो गई? एक बैल जो मर नहीं रहा था लेकिन कष्ट भोग रहा था, उसने सुखपूर्वक प्राण छोड़ दिए। कैसे? वेश्या के पुण्य से। एक बैल था किसी भिखारी का, तो बैल के ऊपर चढ़ करके वो जो है दिन भर घूमता था, भिक्षा मांगता था, और बैल को जो है कुछ भोजन नहीं देता था। तो बहुत दिनों तक जो है बैल जो है भोजन ना मिलने से कमजोर हो गया, और फिर उसको चक्कर भी आने लगे। तो एक संकरे रास्ते से गुजर रहा था जहाँ की बहुत बड़ा गड्ढा था, तो बैल संभल नहीं पाया और गड्ढे में गिर गया। अब गड्ढे में गिर गया तो निकल भी नहीं सकता, कोई निकाल भी नहीं सकता है, और बहुत भीड़ जमा थी वहां। तो बैल को देख रहे थे कि बहुत कष्ट पा रहा है लेकिन वो जो है मर नहीं रहा है। तो सब लोग अपना अपना पुण्य दे रहे थे कि हमारा अगर कुछ पुण्य हो तो ये बैल सुखपूर्वक प्राण त्याग दे। तो वेश्या ने भी अपने मन में ही विचार कर दिया कि अगर मेरा कुछ पुण्य हो तो ये बैल सुखपूर्वक प्राण त्याग दे। तो उस वेश्या के पुण्य से बैल ने सुखपूर्वक प्राण त्याग दिए, कोई कष्ट नहीं हुआ, और सुशर्मा नाम का एक सदाचार्य ब्राह्मण बना, जिसको कि पिछले जन्म की स्मृति भी बनी रही। कितना पुण्य कि उसको पिछले जन्म का भी स्मरण रहा कि मैं बैल था पिछले जन्म में। और उसको ये भी पता रहा कि एक कोई माताजी थी जिसने अपना पुण्य मुझे दिया था। तो जब अगले जन्म में ये सुशर्मा जो ब्राह्मण था, जब रास्ते में उसने देखा इस वेश्या को, तो बोला कि माताजी आपका कौन सा पुण्य है, आपने कौन सा पुण्य मुझे दिया जिसके प्रभाव से मैं जो है सदाचारी ब्राह्मण बना हूं, बैल से सदाचारी ब्राह्मण बना। तो वो वेश्या बोली कि मेरा तो और कुछ पुण्य नहीं है, मेरे घर में तो एक तोता है, वो कुछ पाठ किया करता है जिसको कि मैं सुना करती हूँ बड़े मनोयोग से, और तो कोई मेरा कोई पुण्य नहीं है। तो वो सुशर्मा ब्राह्मण कहता है चलो तुम्हारे घर में तोते से पूछते हैं कि वो क्या पढ़ता है। तो सुशर्मा ब्राह्मण जो है वेश्या के साथ उसके घर में आए और पूछा कि तुम क्या पाठ करते हो। तो तोते ने बताया कि मैं गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। कहना तो गीता के पहले अध्याय में भी कितना पुण्य है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है जो भगवान के नित्य संगी हैं, उनके मुख से जो ना निकले हुए शब्द हैं। यद्यपि अज्ञान है उनमें, लेकिन तो भी चूंकि भगवान से वे अपना अज्ञान या अपना कष्ट अपना दुख जो है प्रकट कर रहे हैं अर्जुन, इसलिए वो शब्द ही बहुत पवित्र हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौड़ताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री यशोद दामोदर भगवान की। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Thank you.